बस लोग कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बातें हैं जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ये भी तो कहिए ना कि जिस वक्त ये अटैक हो जाता है उस वक्त क्या करें। तीन बातें बता दीजिए ऐसे लोगों को। ऐसे वक्त में दुनिया से ताल्लुक कटता है, अल्लाह से जोड़ लीजिए। और अमूमन ऐसे लोगों को पिछले वक्त की कोई बात याद आती है तो उसको पिछली बातों से दूर कीजिए। और सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन वाले मरीज को चीज सताती है वो मुस्तकबिल के अंदेशे, खौफ, हाय ये ना जाए, हाय बेटा घर नहीं आया, हाय फोन नहीं उठा रहा, हाय शोहर किधर है, हाय ये ना, हाय चोर ना आ जाए, हाय हाय हाय, यानी मुस्तकबिल के अंदेशों में दिल हौलता है। तो उस वक्त कहिए कल आएगी तो देखी जाएगी, आज आज और आज इसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में कितना ही सुकून आ गया। और ऐसे लोगों को बहलाइए अच्छी अच्छी चीजों में, बहुत ना सोचें। हम बस वो कहते हैं इनको सुला दें, गोली दे दें, गोली तो कभी ना दें, कि गोलियां दे देकर तो आपने उनका जहन मफलूज कर दिया। जब भी कभी ऐसा कोई मरीज अभी इब्तदाई मराहल में, कभी भी उसको ट्रैंकलाइजर्स पे ना डालें, ठीक है? बाद में जब एक वक्त आता है कि वो खुद को नोचने ही ना लग जाए और उसको सुला दो, इस नौबत पे पहुंचने से पहले ही उसको बचा लीजिए। और अगली टिप लीजिए, जो आप पर जुल्म करे इसका मामला अल्लाह के हवाले कर दें। जी, पहले क्या था, आप खुद को अल्लाह के हवाले करें। आप ये कि कोई आप पे वाकई जुल्म करता है, देखिए दिल तो मेरा मानता ही नहीं है कि कोई जुल्म करता होगा, बिलीव मी, लेकिन करते हैं, सच है, इसका इनकार भी हद से बड़ी भी बात होगी। आप क्यों कहते हैं आप पर जुल्म नहीं होता, क्योंकि आप खुद नहीं किसी पे करते। जब आप जैसे होते हैं ना वैसे ही दूसरों के लिए सोचते हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज हो गया, कर दिया, किसी जाहिल ने ही जुल्म कर दिया, तो उसको अल्लाह पे डाल दें। क्यों? मालिक यौमिद्दीन, हशर के दिन जजा के मालिक के पास जाना है, इसी के पास तमाम इख्तलाफात करने वालों की पेशी होगी। बंदे को अदलो इंसाफ के बारे में ये काफी है कि वह ऐसे दिन का इंतजार करे जिसमें अल्लाह ताला अव्वलीन और आखरीन को जमा करेगा, और ला तुज़लमु यौमन, उस दिन किसी पर जुल्म ना होगा। फैसला करने वाला तन्हा अल्लाह होगा, गवाह फरिश्ते होंगे, और अल्लाह तो फरमाते हैं क्यामत के दिन हम मीजान रखेंगे और किसी नफ्स पर कुछ भी जुल्म ना होगा, और राई के दाने के बराबर भी अमल होगा, तो हम इसको ले आएंगे और हम हिसाब के लिए काफी हैं। जी, जिसको इस बात का यकीन आ गया फिर उसकी जिंदगी में गम नहीं आएंगे। ये सूरत अंबिया की आयतें, और यकीन कर इसको पढ़कर इतना सुकून मिलता है, ऐसे लगता है कि आपके कंधों से बोझ हट गया। किसी वकील पे अपने मामले डालकर क्या आसानी लगती होगी, अल्लाह पे डाल कर देखिए। क्या सीखा जुल्म के बदले में? पहली बात क्या है कि जुल्म का शिकार जालिम के जुल्म का शिकवा दूसरों से कर सकता है। छठे पारे की पहली आयत है जो सूरत निसा की आयत 148 है, ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सू इल्ला मन ज़ुलिम। फिर दूसरी बात अल्लाह ने बता दी कि अगर किसी से जिक्र कर दे तो हिसाब बराबर कर दीजिए, तो ठीक है, ज्यादती नहीं की तो ठीक है, इट्स ओके, इंसाफ है, लेकिन बेहतर यह कि मालिक यौमिद्दीन के हवाले मामला कर दिया जाए। अल्लाह ताला उनको भी माफ कर दे जो हम पे ज्यादती करें, और इसके बदले में अल्लाह हमें भी माफ कर दे। और यकीन कीजिए इंसानी मामलात बड़े शदीद हैं। ये नमाजें, रोजे, हज तो बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह, जानते बूझते ना कोई सरकशी की हो। बेइल्मी में भी बहुत कुछ लोग गलत करते हैं, अल्लाह उसको भी माफ करेगा। लेकिन हदीस सुनिए, अबू दाऊद की रिवायत 4902, जुल्म, बगावत और कतर रहमी। जुल्म तो सबको पता है, बगावत बागी होना, ट्रांसग्रेशन, और कतर रहमी रिश्ते नातों को काटना, इन जैसा कोई और गुनाह नहीं जो इस लायक हो कि अल्लाह ताला इसके मर्तकिब को इसी दुनिया में सजा दे, बावजूद इसके कि इसकी सजा इसने आखरत में रख छोड़ी हो। तो दुनिया में ही ऐसे गुनाहों की सजा मिल जाती है अक्सर। बैठकर चंद सेकंड सोचिए, मैंने तो किसी पे ज्यादती नहीं की, क्योंकि ये नहीं हमें याद होता। ये बड़ा याद है कि वो फलां ने क्या की थी, और वो पहले ही दिन शादी होके आई तो ससुराल में ये हुआ, और सास ने ये कह दिया, और नंदों ने तो ये ही कर दिया। वो नहीं भूले आप 10 15 20 25 30 साल में। आपने भी तो कभी कुछ किसी के साथ किया होगा ना। कभी पूछिए अपनी भाभियों से कि भाभी आज तक मैंने आपका कितनी दफा दिल तोड़ा। कभी पूछिए उन मासूम मासूम बच्चियों से जो बेचारियां सब छोड़ छाड़ के आपके दर पे आती हैं, और आप उनको कोल्लू का बैल बनाते हैं। अल्लाह हमें ज्यादतियों से भी बचाए और बगावत से भी बचाए। अगली टिप है किसरा और एक बुढ़िया। यानी दुनिया के एक बड़े बादशाह के सामने एक छोटी सी बुढ़िया है और क्या हो रहा है। रानी हकीम बुजुर्ग छिमर ने अर्ज किया कि एक ईरानी बुढ़िया के पास मुर्गी थी। इसका झोंपड़ा किसरा के महल के पड़ोस में था। इसने दूसरी बस्ती का सफर किया और ये कह गई कि अरब मुर्गी तेरे हवाले करती हूँ। जब वो चली गई तो किसरा ने अपने महल में तौसी के लिए इसके झोंपड़े को तोड़ दिया। इसके फौजियों ने मुर्गी को जिबा कर दिया। बुढ़िया लौटी और आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगी, मेरे रब, मैं तो गायब थी लेकिन तू तो इधर ही था। तो अल्लाह ने इसे इंसाफ दिलवाया और इसका इंतकाम यूं लिया कि किसरा के अपने बेटे ने बाप को सोते में छुरी से कत्ल कर दिया। अलैहिस्सलाह भी काफ़ी नबदा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? ये आपको इनसे डराते हैं जो अल्लाह से बहुत कमतर हैं? जी, हमें आदम के दो बेटों में अच्छे वाले का रवैया इख्तियार करना चाहिए, जिसने कह दिया था कि मैं तुझ पर दस्त दराजी नहीं करूंगा। ये भी जुमला आज ही पढ़ा, लईम बसत्त इलैया यदक लितक्तुलनी मा अना बिबास इतनी यदी इलैक लियक्तुलक। हदीस में है कि अल्लाह का मकतूल बंदा बन जाओ, कातिल ना बनो। तो मुसलमान का मिशन और पैगाम इंतकाम, हसद और कराहत जैसी चीजों से बहुत बड़ा। तो क्या पता चला कि जब आप कोई मामला अल्लाह पे डाल देते हैं ना, तो अल्लाह ताला फिर उस मामले को अपना मामला बनाता है और आप तो अपने सारे ही मामले अल्लाह पर डाल दें, बल्कि दूसरों को माफ भी कर दें। अच्छा, बस जब हम बाहर बड़े धीमे बनते हैं, बड़े बीबे बनते हैं, अच्छा जी फिर मेरा तो फिर बदला अल्लाह ही लेगा, ये भी गलत है। और मैंने देखा अक्सर भाई बहनों के लिए लोग कहते हैं, मैं तो कुछ नहीं कहती, अल्लाह ही कहेगा। ना ना ना, आप कह लीजिए प्लीज, ये बेहतर है, क्योंकि जब अल्लाह कहते हैं ना तो चीजें निकल जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ने अपने हाथ से देखना है, अपने हिसाब से देखना है। तो ऐसे लोगों को हमेशा फिक्र करनी चाहिए। तो इस वाक्य से क्या सबक मिला? पहली बात है कि अल्लाह कभी जुल्म का बदला दुनिया में भी दे देता है। अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी होता है और जालिम को अल्लाह की पकड़ से बेखौफ नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि ना जा उसकी तहम्मुल पे, बड़ी बेजा है ढब उसकी, पकड़ता है तो चीखें निकल जाती हैं। इब्ने तैमिया का एक कॉल है कि कुफर का निजाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं। यानी कुफर के सहारे कोई हुकूमत चल जाती है, लेकिन कोई जुल्म करे तो वो हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चलती। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। तो अल्लाह ताला जुल्म और सितम से बचाए। आपने फरमाया, अपने भाई की मदद करो ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। साहबा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम मजलूम की तो मदद कर सकते हैं, लेकिन जालिम की मदद किस तरह करें? तो आपने फरमाया कि जुल्म से इसका हाथ पकड़ लो। ये बुखारी की रिवायत है 2444, यानी 2444 है। तो क्या पता चला कि ना जालिम बनना और ना मजलूम बनना। बस दफा मजलूम बनकर दूसरे को जालिम बना देते हैं और उस बेचारे को वहां जाकर फिर उसको भुगतना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि सीधे रहिए, सीधे रखिए, बस यही काम है। क्या सीखा अभी पिछले जितने टॉपिक कुछ पढ़े हैं? पहली बात यह है कि गम के मदावे के लिए अल्लाह से ताल्लुक बनाए। कल को कल पे छोड़ दीजिए, कल आएगी तो देखी जाएगी। और इसी तरह से आने वाले कल से ना डरे। जुल्म का बदला ले सकते हैं, ले लीजिए। बेहतर क्या है कि माफ कर दीजिए और उसका मामला अल्लाह पे डाल दीजिए कि अल्लाह भी उसको माफ कर दे। अगली टिप पे चलते हैं। एहसास कमतरी से फायदा भी हो सकता है। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, यानी कॉम्प्लेक्स होना किसी चीज का, ये कभी फायदा भी देता है? बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम इसे अपने लिए शर न समझो बल्कि वो तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह अकबर, आयशा सिद्दीका पे इतनी बड़ी तोहमत लग गई, पूरे मदीना शहर में एक हैजान बरपा, और अल्लाह कह रहे हैं कि आयशा आप इस वाक्य को अपने लिए बुरा ना समझे। जी, बस अबकरी। अबकरी किसको कहते हैं? जीनियस, बहुत अक्लमंद। बस अबकरी इसलिए बड़े हुए कि इन्हें कमतरी का एहसास था। यानी जितना बंदे को अपने छोटा होने का एहसास होता है, उतना वो जीरक और जीनियस हो जाता है। मसलन बहुत से उलमा आजाद करदा गुलाम या मामूली इंसान थे, जैसे अब ये तारीख की कुछ शख्सियात हैं, अता, सईद बिन जुबैर, कतादा, बुखारी, तिरमिजी, अबू हनीफा रहमहुमुल्लाह, अल्लाह इन सब पे अपनी रहमतें फरमाए। दुनिया के बहुत जहीन तरीन और शरीयत के माहरीन को कोर चश्मी लाहक थी, यानी आंखों से कम दिखता था। जैसे इब्ने अब्बास, कतादा, इब्ने उम्मे मकतूम, इनका तो जिक्र कुरान में भी है कि जिसमें अबस वतवल्लाजा, ये आमा इब्ने मकतूम थे। इस तरह आमश, यजीद बिन हारून, उलमा मुताखरीन यानी बाद वाले उलमा में शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम आलिया शेख, शेख अब्दुल्ला बिन हमीद, शेख अब्दुल अजीज बिन बाज नबीना थे। ये तो असरे हाजिर की शख्सियत गुजरे, चंद साल पहले इनका इंतकाल हुआ। इसी तरह मुतद्दत अरब अबकरी शख्सियतें मुजद्दीन यानी ईजाद करने वाले और अज़किया यानी जकी थे, बहुत समझदार और अक्लमंद थे, जिन्हें आज़ार लाहक थे। कोई अंधा था, कोई गूंगा, कोई बहरा, कोई लंगड़ा, कोई चलने फिरने से माजूर, इसके बावजूद उन्होंने अपने उलूम इख्तराआत और तहकीकात से इंसानी जिंदगी में असर डाला, यानी जो माजूरी थी उसको पीछे डाल दिया और जो खूबी थी उसको आगे ले आए। यही करने का काम है आज भी हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें ऐसा नूर देगा जिससे तुम चलोगे। बहुत बड़ी इल्मी सनत ही सब कुछ नहीं होती, यानी ये जो सर्टिफिकेट्स और बड़े बड़े स्लोगन्स मिलते हैं ना, डिप्लोमास, ये कुछ नहीं होते। आप ये मत सोचिए कि जिसके पास बहुत सी डिग्रियां हैं वही कामयाब है, नहीं। अगर आपने यूनिवर्सिटी से PhD या MA या BA की डिग्री नहीं ली तो कोई खास बात नहीं, आप आगे निकल सकते हैं, डिग्री के बगैर ही मुअस्सर हो सकते हैं और उम्मत को बहुत फायदा दे सकते हैं। कितने बड़े और अहम आदमी डिग्री नहीं रखते, लेकिन अपनी साबित कदमी, हौसला, इरादा और अजीमत इस्तकलाल से उन्होंने रास्ते बना लिए। जरा से इस पे रुकिए, आज का एक बहुत बड़ा तागूत डिग्रियां भी हैं, सर्टिफिकेट्स। कोई सर्टिफिकेट ऑफर कर देना तो उल्टे पांव चल पड़ते हैं कि नहीं, ये एक टैग मिलता है और पास कहते हैं बाद में जॉब मिल जाएगी। अच्छा, जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी जॉब मिलेगी? मैंने तो वो देखा है कि जो जॉब्स पे पक्की जॉब पे लग जाते हैं ना, उनको तो डिग्री की कोई परवाह भी नहीं रहती। भाई, तभी आपने कभी मेरी भी डिग्री पूछी? कोई है मेरे पास भी सर्टिफिकेट के? नहीं, ऐसे ही रोज आके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, और 20-20 साल से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, मैं उनको जानती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे की डिग्री उसका अपना आप होता है, उसका इल्म, उसका तारुफ होता है। तो बड़े बड़े इदारों से नाम जोड़ लेना, बड़े बड़े उस्तादों की शागिर्दी को अपने नाम के साथ टैग बना लेना, ये कामयाबी नहीं है। हमारे असलाफ तो डिग्री देते ही नहीं थे, सनत नहीं मिलती थी। वो कहते थे, जिस दिन सनत मिली इसने अपने आप को बड़े से बड़ा बना लेना। ये कहेगा अब और क्यों सीखूं, मैं तो पहले डिग्री होल्डर हूँ। तो हर वो चीज जिसमें दिमाग में हवा भरे उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। टेस्ट ले लीजिए, 6-6 डिग्रियां किए हुए वालों को भी 2 जुमले सीधे नहीं बोलने आते। तो याद रखिए कि इन चीजों से निकलिए, आप अपनी जात को मनवाते रह गए और इस्लाम पीछे से पीछे जाता गया। कितने लोग हैं जो अभी नमाज नहीं पढ़ते और आप अपनी ही जाती इस्लाह की कोशिशों में बैठे हुए। साबित कदमी मांगिए, हौसले मांगिए, इरादे पुख्ता रखिए, कहिए अल्लाह हमसे काम करा ले, जो आता है ना उसी में करा ले, फिर ऐसा ऐसा और भी सिखा देना। यकीन कीजिए, काम करने के दौरान सीखा जाता है। ये वो जॉब नहीं है कि जिसमें आपके नाम के साथ 4-6 सर्टिफिकेट्स लगे तो फिर आपको जॉब मिलती है। मूसा के पास कौन सी डिग्री थी? कैसे मदियन से मिसर आते हुए चुने गए, और अल्लाह के नबी तो उम्मीद थे। तो लिहाजा असरे हाजिर यानी मौजूदा दौर में दावत, तरबियत फिक्र, शऊर और दीनी इल्मो अदब वगैरह में जिन लोगों का बड़ा किरदार है, इनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां ना थी। मैं इधर आपको कम से कम 10 नाम ऐसे आज के दौर के लिखा सकती हूँ कि उनके पास कोई दीनी डिग्री नहीं है। दुनियावी डॉक्टर दुनियावी चीजों से पलट कर इधर आए, अल्लाह ने उनसे इतने बड़े काम लिए, आज बड़े बड़ी तहरीकात के वो बड़े बड़े लीडर बन गए। अल्लाह ने उनसे लीडरशिप का काम ले लिया, उन्होंने टीमें बना दी, गिरोह बना दिए। मसअब इब्ने बास, मालिक बिन नबी, अल इतिकाद, तंतावी, अबू जहरा, अबुल आला मौदूदी, अबुल हसन अली नदवी वगैरह, करूने उला के उलमाए सलफ और अबकरी शख्सियात की तो बात ही और। अबू बकर के पास क्या डिग्री थी? उमर फारूक किस मदरसे से पढ़े थे? हजरत अली उस्मान के पास किस इदारे का सर्टिफिकेट था? नामों में खो गए, आपने अपने मुकाम को छोड़ दिया। हैरत की बात है, और ये कभी नहीं हो सकता कि आप एक चीज पकड़े और दूसरी ढीली ना हो। पहले ढीली होती है, फिर गिर जाती है हाथ से, और आपको उस दिन समझ आएगी जब आपसे पीछे वाले लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। अल्लाह ने अपने काम लेने हैं, अल्लाह मेरे जैसे बंदों से काम ले सकता है तो सबसे ले लेगा। तो लिहाजा दर्द पैदा कीजिए अपने दिल में। इसके बरखिलाफ दुनिया में लाखों लोग डॉक्टरेट की डिग्री लिए फिर रहे हैं जिनका दुनिया में कोई नाम और निशान नहीं। फिरते हैं अमीर ख्वार, कुछ पूछता नहीं। क्या तुम इनमें से किसी के वजूद का एहसास करते हो या इनका कोई चर्चा होता है? यानी कितने गुमनाम लोग चले गए, आप मेरे से तो हजारों गुना ज्यादा उनके पास इल्म था। ये तो अल्लाह का फैसला है, उसने किससे काम लेना है। ये कहा करे अल्लाह काम ले। देखिए ना, बड़ी बड़ी डिग्रियों के बाद जॉब भी चाहिए ना, काम चाहिए। आप उन माओ को देखिए जिनके बच्चे 10-10, 20-20 साल पढ़ के जॉबलेस हैं, फिर वो कहती है अच्छा जाओ रेड़ी पर लगा लो, आम ही बेच लो। काम मिले तो आपको तो बगैर पढ़े काम मिल रहा है। आप इस काम की नकदरी करके नामों के पीछे भागे तो ये ज्यादती है। कनात एक अजीम खजाना है। जिस तरह दूसरी चीजों पे कनात करनी पड़ती है ना, रिस्क पे, खाने पीने पे, इस तरह बाज दफा इंसान को अपनी जाती चीजों पे कनात करनी पड़ती। अल्लाह से मांगिए, अल्लाह देता है। लेकिन देखिए, एक तरफ आपकी जाती सलाह, मिसाल देती हूँ कि इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तकरीबन 2 घंटे का सुबह का सेशन है, 2 घंटे शाम का है। उससे पहले भी आज यानी 2 और क्लासेस भी हुई, नए कोर्सेज में छोटे छोटे, सारा दिन चलती हैं बातें, मीटिंग्स हैं। अगर इतना वक्त मैं रोज अपनी जाती तालीम तरबियत पे लगाऊं तो हो सकता है कि मैं बहुत पढ़ लूं, हिफ्ज कर चुकूं, और क्या कुछ ना कर दूं, और जो पढ़ा है उसको याद रख लूं। मुमकिन है, और करना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहती। लेकिन ये एक इम्तिहान होता है। हर साल दौरे कुरान एक ऐसी रुकावट होती है रमजान अल्लाह के घर में गुजारने की, कि पिछले एक साल पीछे हमने आखिरी 3 4 दिन गुजार ही लिए। कई साल की ख्वाहिश थी, कितने साल से हज चल रहा है जेहन में, किया हुआ, लेकिन दिल चाहता है दोबारा करें। लेकिन नए कोर्सेज शुरू होते हैं, उस साल वही होती हूँ जहाँ दौरे कुरान होता है। तो कहने का मकसद ये है कि कई दफा आप जाती फवायद छोड़कर दीन को फायदा देना, इसको बड़ी नेकी समझ, और वक्त का तकाजा भी यही है। तो कनात कीजिए जो आपके नसीब में अल्लाह आपको दे रहा है। हदीसे सहीह में है कि अल्लाह ने जो कुछ दिया इस पे राजी रहो, सबसे बड़े गनी हो जाओगे। अपनी बीवी, अपनी आमदनी, अपनी सवारी, अपने बच्चों और अपनी नौकरी से मुतमईन रहने में आपको सआदत और तमानियत मिलेगी। हदीसे सही में ये भी है कि गिना असलन नफ्स का गिना, यानी दौलत उसकी जिसका दिल गनी। बाज तो पूरा इल्म लेकर भी कभी दिल की कदूरतें ना धुली, और पढ़ पढ़ के भी यकीन करे एक आयत पूरी नहीं सीधी पढ़ सकते लोग। असल बात यह है कि अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी हो ना तो इंसान को बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन हम वो करते हैं जो हमारे दोस्त करते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द के करते हैं। ट्रेंड्स होते हैं ना, फैशन बन जाती है एक चीज, फिर आप कहते हैं मैं क्यों पीछे रहूं। ये ना कसरते मालो जर और मनसब से हासिल नहीं होता, बल्कि इससे अल्लाह ने जो तकदीर में लिखा है इस पर कनात की जाए। सही हदीस में है कि बिला शुबा अल्लाह गनी, तकवा और अपना हाल छुपाने वाले बंदे को दोस्त रखता है। यानी अपने तारुफ में कोई बहुत लंबे चौड़े साहब के लाके ना ही लिखाए तो अल्लाह को वो बंदा अच्छा लगता है। एक हदीस में कि अल्लाह इसका गिना इसके दिल में डाल दे। एक ने बताया कि मैं कार वाले के साथ हवाई अड्डे से बैठा शहर का इरादा किया, मैंने देखा कि ड्राइवर शादों फरहा और साबिरो शाकिर था, अल्लाह की हमदो जिक्र करता था। मैंने इसके कुंबे के बारे में मालूम किया तो बताया कि इसके पास 2 बीवियां हैं, 10 से ज्यादा बच्चे हैं, महीने भर की आमदन सिर्फ 800 रियाल है, घर में पुराने कमरे हैं जिनमें इसके बीवी बच्चे रहते हैं, लेकिन वो अपनी किस्मत पर राजी और खुश था। रावी कहता है कि मैंने इस शख्स के और इन लोगों के बीच मुवाजना किया जो अरबों रुपए रखते हैं, जिनके पास माल और शानदार मकानात हैं, लेकिन बदहाली का शिकार हैं। यहीं से मुझे समझ में आया कि हकीकी खुशी और मुसर्रत माल में नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे ये बात आज समझ आ जाए। एक बड़े ताजिर और सर्वतमंद को जानता हूँ, मतलब बिलियनेरियन कह लीजिए, जिसकी आमदनी करोड़ों में थी और जिसके पास दसियों यानी 10 से ज्यादा महल और कोठियां थी, लेकिन बद अखलाक था, मखलूबुल गजब तार तंग दिल। इसकी मौत घर वालों से दूर हुई क्योंकि किस्मत पर राजी ना था, फिर भी मजीद की तमा करता है। हरगिज़ नहीं वो हमारी आयात को झुटलाता है। कदीम जमाने के अरब इत्मीनान और सुकून के लिए सहरा में बिल्कुल तन्हा निकल जाते और लोगों से अलग रहते। ऐसे एक आदमी का शेर है, भेड़िया बोला मुझे इसकी आवाज से उनसियत हुई, लेकिन इंसान की आवाज आने पर मैं अड़ने के करीब हो गया। हजरत अबू जर लोगों को छोड़कर रब्जा निकल गए, यानी जंगल में चले गए। सुफियान सारी कहते मैं चाहता हूँ कि किसी ऐसी वादी में चला जाऊं जहां मुझे कोई पहचान न सके। हदीस में है बहुत जल्द आएगा वो दिन जब मुसलमान का बेहतरीन माल इसकी बकरियां होंगी, जिन्हें वो पहाड़ों और बारिश की जगहों में ले जाकर चराएगा और वो फितनों से बचेगा। कहते हैं कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुगन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो, पड़िए गर बीमार तो ना कोई हो तीमारदार, और जब मर जाइए तो नौहा खुआ कोई ना हो। अब ये गालिब साहब कहते हैं, मैं तो आपको इसका मशवरा नहीं देती, लेकिन उन्होंने हदीस की बात को अपने अंदाज से कह दिया। चुनाचे हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो की शहादत पर जब फितने बरपा हो गए तो बहुत से लोग बादिया नशीनी यानी जंगलों में जाकर रहने लगे और हिजरत इख्तियार कर गए। इनमें इब्ने उमर, उसामा बिन जैद और मोहम्मद बिन मुस्लिमा भी थे। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्हें फक्र व तकद्दुर और तंगी लाहक है। इसका सबब इसके अलावा और कुछ नहीं कि वो अल्लाह से दूर हो गए। अल्लाह कहते आप पाएंगे कि इनमें मालदार लंबी कमाई वाला है, जिसे हर तरह की आफियत हासिल है, लेकिन जिसने अल्लाह की इताअत से एराज किया, नमाज में कोताही की, बड़े बड़े गुनाह किए, तो अल्लाह ने जिस्म की आफियत और रिज़्क़ की कुशादगी छीन कर इसे फ़क्र व फ़ाक़ा और रंजो गम में डाल दिया। अब एक बला खत्म होती नहीं कि दूसरी आ गई, एक मुसीबत से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरी में फंस गया। और अल्लाह का कलाम सच है कि वह मना रदन जिक्री फाइन लहू मई शतन का, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा इसकी जिंदगी तंग हो जाएगी। ये इसलिए कि अल्लाह किसी कौम से अपनी नेमत खत्म नहीं करता जब तक वो खुद अपने आप को ना बदल लें। और फरमाया, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, बहुत सी चीजों को तो वो माफ कर देता है, सूरह शूरा की आयत है ये। और अगर वो सीधे रास्ते पर चलते रहते तो हम इनको ठंडा मीठा पानी पिलाते, सूरह जिन की आयत है। मैं चाहता था कि मेरे पास कोई जादुई नुस्खा होता, यानी कोई मैजिक रेसिपी होती जिससे आपके रंजो बला और गमो फिक्र को जायल कर देता, लेकिन मेरे बस में ये कहा। ताहम उलमाए मिल्लत और माहरीने शरीयत के शिफा खाने का एक तिब्बी नुस्खा जरूर आपको बताऊंगा, वो ये है। यानी यकीन कीजिए कि देने वाले के दिल में यही ख्वाहिश होती है कि सबके गम दूर हो जाए। मैं हर रोज दुआ करके बैठती हूँ कि अल्लाह जो सुन रहे हैं उनके गम दूर कर दे, लेकिन ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। तो एक नुस्खा इन्होंने बताया, मैं भी आपको बता देती हूँ कि खालिक की इबादत कीजिए, रोजी पर राजी रहिए, कजा व कदर के आगे सर तस्लीम खम कीजिए, दुनिया से दिल न लगाइए, उम्मीदें कम रखिए, बस यही नुस्खा है खुश रहने का। एक मशहूर अमरीकी माहिर नफ्सियात विलियम जेम्स, जो इल्म नफ्सियात का बाबा आदम कहलाया जाता है, यानी उसको साइकोलॉजी का बाप कहते हैं, विलियम जेम्स, इसकी बात पढ़कर बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कहता है कि हम इंसान इन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारी मलकियत में नहीं, जो हमारी मिल्क में है, इस पर अल्लाह का शुक्र तक अदा नहीं करते। हमारी जिंदगी में जो अलमनाक पहलू हैं, इन पर हमारी नजर खूब जाती है, जो रोशन और तापनाक गोशे हैं वो दिखाई नहीं देते, जो हम में कमी है इस पर हसरत होती है, जो हमें हासिल है इससे खुश नहीं होते। बात तो बड़ी सच्ची है अगर आप सुन रहे हैं तो। अगर तुम शुक्र करो तो मैं जरूर बढ़ा दूंगा, वला इन शकर तुम लाजीदन्नकुम, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7 है ये। अल्लाह की पनाह है इस नफ्स से जो जालिम, कभी सेराब ना हो, मिन नफ्स ला तशबाउ, दुआ पढ़ी हमने। हदीस में ये भी है कि जिसने सुबह इस हाल में की कि इसको आखरत की फिक्र थी, अल्लाह इसके इंतशार को दूर कर देगा, इसके दिल को घिना अता कर देगा और दुनिया इसके पैरों पड़ती आएगी। जी ये सच है और सही रिवायत अल्लाह के नबी की, जो इस हाल में सुबह करे कि दुनिया की फिक्र होगी तो अल्लाह इसके इंतशार यानी इस्तराब और जहनी उलझनों को बढ़ा देगा, इसे आंखों के आगे मुख्ताजगी नजर आएगी, दुनिया में से वही मिलेगा जो इसके लिए लिख दिया क्या होगा। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों जमीन को किसने पैदा किया, सूरज चांद को किसने मुसख्खर किया, तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने, फिर ये कहाँ बहके जा रहे हैं। तो ये था आज का सबक, क्या सीखा कि कमतरी भी हो तो फायदा हो सकता है, यानी ऐसा से कमतरी से बाहर आइए, अपनी जिंदगी के वीक पॉइंट्स को पीछे डालिए और जो स्ट्रांग थिंग्स है उनको आगे ले आइए। बस आप देखिए कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हो, उनको काले होने का ताना दिया जाता, सब काले रंग के लोगों के लिए मिसाल है कि लोगों के फायदे के बन गए। फिर इसी तरह देखिए अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम नाबीना थे, लेकिन क्या फायदा हुआ कि कुरान पाक में इनका जिक्र आ गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो फुकराए सहाबा में से थे, लेकिन आला दर्जे के जोहद का शिकार थे। तो किसी एक तरफ से दूसरी चीजें तो मिलती ही है ना। अल्लाह से ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत बना दे। जितना ज्यादा आप और मैं अपने आप को इस रंग में लेंगे, उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला आपकी मेरी मदद भी करेगा और बेहतरीन तरीके से आपको मुझे इन चीजों के ऊपर रखेगा। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राजी हो। आज के लिए इतना ही काफी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।